राजवीर ने धीरे से कहा, और उन 3 दिनों तक मैं उससे दूर रहा। मेरी कोई आवाज, कोई कमांड उसके पास नहीं पहुंची। उसने सिर उठाकर चप की ओर देखा, और 3रे दिन नैना मेरे वश से बाहर आ गई। और वशीकरण से बाहर आने के बाद जब उसे पता चला कि उसके पूरे परिवार की मौत हो चुकी है, उसके पूरे परिवार को मारा जा चुका था, तो वो पूरी तरह से टूट गई और पूरी हद तक रोने लगी थी। उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसके परिवार की जान उसी ने खुद अपने हाथों से ली थी। उसने भी बाकी सब की बातों पर यकीन कर लिया था कि किसी और लोगों ने आकर उसके परिवार को मारा है, और वो दिमागी रूप से बीमार थी। फिर लोगों ने जैसे तैसे उसे संभाला, और 2 से 3 दिनों के बाद जैसे ही उसे कुछ इंजेक्शंस और ट्रीटमेंट मिले तो उसके दिमाग को थोड़ा सुकून मिला था। और जैसे ही कोर्ट ने ये पाया कि नैना माथुर अब काफ़ी हद तक ठीक है, तब जाकर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। डिस्चार्ज के बाद वो आश्रम में गई थी और सभी से मिलकर बहुत ज़्यादा रोई थी। अब मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि अब उसके शरीर को मैं छू चुका था। उसके बिना रह पाना मेरे लिए नामुमकिन था। लेकिन अब सबसे बड़ी रुकावट मेरे सामने थी, वृद्धाश्रम के लोग और अनाथाश्रम के लोग, जो कि 1-2 नहीं बल्कि हजारों लाखों में थे। क्योंकि वहां पर 1-2 नहीं बल्कि माथुर परिवार के पूरे 50-100 से ज़्यादा आश्रम चला करते थे, और उन सब की चहेती थी नैना माथुर। अब मुझे कोई रास्ता निकालना था। मैंने कुछ दिनों तक उस पर नज़र रखी। उसने नॉर्मल बर्ताव करना शुरू कर दिया था। वो बार बार अपने परिवार को याद करके रोती थी, अपने घर जाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी, और क्योंकि उसका घर पुलिस वालों ने सील कर रखा था। लेकिन एक दिन मुझे फिर से मौका मिल गया। मुझे एक बार फिर नैना माथुर को अपने कब्जे में लेना ही था, और इस बार मैंने ठान लिया था, इस बार कुछ ऐसा करना होगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में आ जाए और फिर कभी भी दूर न जा पाए। मैंने अनाथ आश्रम के एक बच्चे को अपने पास बुलाया, उसे ढेर सारी टॉफियां और चॉकलेट दी, और फिर उसी के हाथों एक स्पेशल मिठाई नैना माथुर तक भिजवा दी। मैं जानता था कि उस बच्चे का लाया हुआ सामान वो ज़रूर खाएगी। जैसे ही नैना ने वो मिठाई खाई, एक बार फिर से वो मेरी कठपुतली बन चुकी थी। लेकिन इस बार मुझे सोच समझ कर काम करना था। हमेशा की तरह बहाने से मैं चैरिटी करने के इरादे से उस अनाथ आश्रम में गया। वहां जाकर मैंने बच्चों को फल फ्रूट, किताबें और पैसे बांटे। उसके बाद नैना माथुर से मुस्कुराकर मिला, उसके गले लगा और धीरे से उसके कान में कहा, आज रात को इस अनाथ आश्रम के 3 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर देना। ये बोलकर मैं वहां से चला गया। मैं जानता था कि जो काम मैंने उसे दिया है वो जरूर करेगी, और ऐसा ही हुआ। उसी रात उसने आश्रम के 3 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। उनमें से एक बच्चा वही शामिल था जिसने उसे वो मिठाई खिलाई थी। हत्या करने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगी थी, जैसा मैंने उसे कहा था। और जैसे ही अनाथ आश्रम वालों ने ये देखा, उनकी रूह कांप गई। लेकिन वे नैना माथुर से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से दबा लिया और उन 3 बच्चों को वहीं दफना दिया। उन्होंने नैना माथुर के शरीर पर लगे खून को भी साफ कर दिया, क्योंकि नैना माथुर की वजह से ही सारे आश्रम चल रहे थे। उनके काफ़ी ज़्यादा एहसान थे उन लोगों के ऊपर, इसीलिए वे उसे किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना चाहते थे और ना ही किसी मुसीबत में डालना चाहते थे। हालांकि अंदर ही अंदर वे सभी लोग नैना माथुर से डरने लगे थे, इसीलिए उन्होंने नैना को एक कमरे में बंद करके रखने का फैसला किया। और जब मैं एक बार फिर से अनाथ आश्रम में नैना से मिलने के इरादे से गया और मुझे नैना कहीं नहीं मिली, तो मैं चौंक गया। लेकिन बंद कमरे के पीछे नैना है ये मैं समझ चुका था। तब मैं मौका देखकर नैना से मिला और उसे हुक्म दिया, आज रात को वृद्धाश्रम में जाओ और जितना हो सके उतना खूनी खेल खेलो। ये बोलकर मुस्कुराते हुए मैं वहां से चला गया। वहीं नैना को आदेश मिल चुका था, उसे हर हाल में मेरा दिया हुआ हुक्म पूरा करना ही था। किसी तरह मौका देखकर वो वहां से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर वो सीधा वृद्धाश्रम पहुंची और वहां जाकर उसने ताबड़तोड़ लोगों को मारना शुरू कर दिया। कई लोग जख्मी हो गए, 1-2 की जान भी चली गई थी। लेकिन वक्त रहते सभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और सीधे तरीके से मुझे वहां बुलाया। वे लोग पुलिस को इसमें शामिल नहीं करना चाहते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो नैना को उन्होंने रस्सियों से बांध रखा था। एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। तभी उसी रात आश्रम वाले सभी अनाथ और वृद्ध आश्रम के लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि वो परेशान करे। ये लड़की पहले देवी हुआ करती थी, लेकिन न जाने अब इसके अंदर कौन सी आत्मा आ गई है जो इस तरीके से खून कर रही है।
ये हम सब लोगों के खून की प्यासी बन चुकी है और हम इसे पुलिस के भी हवाले नहीं करना चाहते। बड़ी मुश्किल से हमने इसे पुलिस से छुपाया है। डॉक्टर साहब, आप इसमें हमारी मदद कर सकते हो। इस समय इसे अपने साथ ले जाइए और इसका इलाज करो, और उसे बिल्कुल ठीक करके ही हमारे सामने लाना। अभी हमारे सामने मत लेकर आना, ऐसी लड़की से हमें नफरत हो चुकी है। इसने हमारे तीन बच्चों की जान ले ली और आज बुजुर्गों पर हमला किया। न जाने आगे क्या करते। हमें तो अब इस बात का भी यकीन हो चुका है कि अपने पूरे परिवार को भी इसी ने मारा होगा। इस लड़की को यहां से लेकर चले जाइए। इस लड़की के लिए अब हमारे यहां कोई जगह नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने पूरी तरह से नैना माथुर को राजवीर जिंदल को सौंप दिया था। राजवीर की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी, और जब वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगा तो जाने से पहले वो अनाथ आश्रम वालों और वृद्ध आश्रम वालों से ये वादा भी ले चुका था कि नैना माथुर मर चुकी है। केवल यही बात सभी लोगों को बताई जाएगी और उसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। इसीलिए अब सब लोगों के मन में जहां पहले नैना माथुर के लिए इज्जत, प्यार और मान सम्मान था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब सब लोग उससे केवल डरते थे, उससे नफरत करते थे, और अपनी इसी नफरत में उन्होंने नैना को राजवीर के हवाले कर दिया था। और अब राजवीर नैना को अपने साथ लेकर चला गया था। राजवीर के साथ आते ही नैना पूरी तरह से शांत थी, क्योंकि उसने उसे शांत रहने का हुक्म दिया हुआ था। वो सीधा उसे अपने ट्रांसफर के जरिए बेंगलुरु शहर में ले गया। यहां अपनी डार्क दुनिया में उसने नैना को रखा और साथ ही साथ उस पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। उसने उसकी पुरानी सारी यादें मिटा दी और उसके दिल दिमाग में केवल यही बात डाल दी कि सिर्फ राजवीर ही उसकी दुनिया है, राजवीर ही उसकी मोहब्बत है, और राजवीर जो कहेगा वही उसके लिए पत्थर की लकीर है। राजवीर के अलावा उसकी ना कोई दुनिया है, ना परिवार, ना कोई और रिश्ता। सब कुछ उसका सिर्फ और सिर्फ राजवीर है। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा था। उस डाक विला में ले जाकर उसने सबसे पहले उसकी बच्चेदानी निकलवा दी थी, ताकि नैना माथुर कभी किसी बच्चे को जन्म ना दे पाए, क्योंकि वो उसका फिगर खराब होते हुए नहीं देखना चाहता था। वो उसे हमेशा अपनी ट्रॉफी वाइफ की तरह रखना चाहता था और उसका पूरी तरह से उपभोग करना चाहता था। उसकी पुरानी सारी यादें मिट चुकी थी और अब उसके दिल दिमाग में अगर कोई बसता था तो सिर्फ राजवीर बसता था। कुछ समय बाद राजवीर को उसकी फरमाबरदारी से थोड़ी सी इरिटेशन होने लगी, क्योंकि वो राजवीर की हर बात मानती थी। राजवीर जब कहता वो उठती, जब कहता खाती, पीती, सोती, सब कुछ सिर्फ उसके कहने पर होता। लेकिन अब उसे लगा कि उसमें थोड़े बहुत बीवी वाले नखरे भी होने चाहिए, इसीलिए उसने धीरे धीरे उसे बीवी की तरह रहना, बातें करना और अपनी डिमांड रखना भी सिखा दिया। अब नैना को जो भी पसंद आता वो उसे डिमांड कर देती, और राजवीर उसकी हर डिमांड पूरी करके खुश हुआ करता था। इतना ही नहीं, एक बार तो नैना को छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने का शौक जाग गया,
इसलिए उसने कुछ सड़क किनारे खेलते हुए बच्चों को लाने की ख्वाहिश राजवीर से जाहिर कर दी। और अगले ही पल राजवीर ने उन बच्चों को अगवा करके नैना के सामने ला खड़ा किया। कुछ दिनों तक नैना उनके साथ खेली, खुश रही, उनके साथ समय बिताया। लेकिन जब उसका मन भर गया तब उसने राजवीर से कहा कि उन बच्चों को जहां से लाया गया था वहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन राजवीर ने उन्हें छोड़ने के बजाय उनका गला काट दिया और उन्हें उसी डाक विला के गार्डन में दफना दिया। और उसके बाद अपने बीमार सोच के साथ वो अपनी हर ख्वाहिश और हवस पूरी करता रहा। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक औरत के कानों में पहने हुए झुमके नैना को पसंद आ गए और उसने उनकी ख्वाहिश राजवीर से जाहिर कर दी, तो राजवीर ने उस औरत के कान ही काट लिए और वे झुमके लाकर नैना को पहना दिए। पूरे मॉल में किसी को पता तक नहीं चला था और वो झुमके उसने नैना को दे दिए थे। राजवीर ने पूरी तरह से नैना की हर ख्वाहिश को पूरा करना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। और यही एक कारण था कि जब आस्था के परिवार में उसके दादाजी ने वो लॉकेट बनवाया और वो लॉकेट नैना को पसंद आ गया था, तो उसकी ख्वाहिश उसने राजवीर से जाहिर कर दी थी। लेकिन उस वक्त उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। अब नैना की तो हर ख्वाहिश पूरी हुआ करती थी, तो जब वो लॉकेट की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो उसे अंदर ही अंदर चैन नहीं मिला। वो अंदर से टूट गई और उसने सीधा अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड कर लिया। उसे देखकर राजवीर पूरी तरह से पागल हो उठा था। नैना की ख्वाहिश पूरी करना, उसके साथ रहना, उसकी हर जरूरत को पूरा करना, यही उसकी जिंदगी की दिनचर्या बन चुकी थी। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ नैना के आसपास ही घूमती थी। लेकिन उसे इस तरह मरता हुआ देखकर उसकी जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो नैना के साथ अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाकर रहना चाहता था, लेकिन अब उसे मरा हुआ देखकर उसने ठान लिया कि जिसकी वजह से वो मरी है उसके पूरे परिवार को वो जड़ से खत्म कर देगा, सभी को मौत के घाट उतार देगा। और जिन लोगों की वजह से उसकी बीवी मरी है उन सभी के लॉकेट वो उसकी मरी हुई लाश पर चढ़ाएगा। अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने नैना के शरीर को पूरी तरह से ताज़ा बनाए रखा, और जब उसका मन करता वो उसकी लाश के साथ अपनी बीमार हरकतें करता। अबीर सिंह राठौर की दादी को मारकर उनके गले का लॉकेट निकालकर वो नैना की लाश को पहना चुका था। साथ ही साथ जितने भी रिश्तेदारों के पास ऐसे लॉकेट थे वो सभी वो इकट्ठा करके उसकी लाश को पहना चुका था। केवल एक आखिरी लॉकेट बचा था जो कि आस्था के पास था। फिलहाल अब राजवीर ने सबको देखते हुए कहा था, ये थी मेरी दर्द से भरी लव स्टोरी, देखा तुमने, जिसको मैंने अपनी मोहब्बत से अपने पास रखा, अपने लिए बनाया, अपने जज्बात डाले, उसी को मैं बचा नहीं पाया। तो तुम ही बताओ अरमान, मैं क्या करता? मैंने तो ये भी सोच लिया था कि उसकी लाश के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन तुमने तो उसकी लाश को ही निकलवा कर जला दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जब मैंने नैना माथुर की शक्ल इस लड़की को दी और ये भी तुम्हारी ही रिश्तेदार निकली, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अब मैं इसकी शक्ल को फिर से नैना बनाऊंगा और इसके साथ वही सब करूंगा। इसे भी एक्सपेरिमेंट करके पूरी तरह बदल दूंगा। इसके माँ बाप को, इसके रिश्तेदारों को, सबको मरवाना पड़ेगा, तभी जाकर ये मेरी पहले वाली नैना बन पाएगी। ये कहते हुए राजवीर जोर जोर से हंसने लगा था। वहीं ये सब जानने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों के हाथ पांव कांपने लगे थे। आज तक उन्होंने दुनिया में हर तरह के पागल देखे थे, अरमान का पागलपन भी देखा था, लेकिन कोई इतना खतरनाक और विकृत हो सकता है ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान छोटे छोटे मासूम बच्चों तक की हत्या उसी की अपनी बुआ से करवा सकता है। इतना बड़ा पागलपन देखकर सभी को राजवीर से डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दरिंदा खड़ा हो। तभी मनोज जी तुरंत ही बेख्याली में बोल पड़े, नैना माथुर के परिवार की मौत का मैं गवाह हूं। मैंने अपनी आंखों से नैना माथुर को उसके पूरे परिवार को मारते हुए देखा था। यही एक कारण था कि जब मैंने प्रियंका का चेहरा नैना माथुर के चेहरे जैसा देखा तो मैं पूरी तरह से घबरा गया, डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि नैना माथुर का वो चेहरा, वो दरिंदगी मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, जिसमें उसने अपने ही भाइयों की हत्या की, अपनी भाभियों की जान ली, छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथ पैर तक काट डाले। वो दृश्य आज तक मेरी आंखों के सामने से गया ही नहीं है। और सबसे ज्यादा उसका वो खौफनाक चेहरा जब वो खून से सने चेहरे के साथ जोर जोर से हंस रही थी। अब जैसे ही राजवीर ने ये सुना वो अचानक मनोज जी के पास आया, उनके करीब छुपकर उन्हें घूरते हुए बोला, अरे तू तो वही है राजवीर जिंदल। वैसे तो कोई सबूत अपने पीछे नहीं छोड़ता, लेकिन उस वक्त तेरी किस्मत अच्छी थी, तू वहां से भाग गया। चलो अच्छा ही हुआ तू भाग गया, वरना अगर तू नहीं भागता तो अपनी बेटी को कैसे पैदा करता। ये कहते हुए राजवीर एक बार फिर हंस पड़ा था, और अगले ही पल वो अपनी गर्दन तिरछी करके अरमान को देखते हुए बोला, देखा तूने अपने गुरु की पूरी लव स्टोरी सुन ली, अब वक्त है अपने वादे को पूरा करने का। एक काम कर, अपनी बीवी की मौत में खुद को तड़पा तड़पा कर मार डाल। राजवीर जिंदल की लव स्टोरी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अरमान ने क्यों जाने आखिरकार राजवीर जिंदल की स्टोरी जानने के लिए। बने रहिए दोस्तों, सुनते रहिए तेरे इश्क में, ओनली ऑन पॉकेट FM पर।